Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandakopanishad, presented by Swami Vishwananda Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
Hari Om. Hari Om. Hari पवित्रायद्वाणि प्रविशति विचित्रार्दयदां तदाकाराच्छिन्ना भवति निखिलाकारघटितां स्मरामि प्रातस्तं नयनरमणीयं सुखकरम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ओम् नारायण 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 ओमित्येतदक्षरमिदग्वं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कारो एवं यच्चान्यत्र कालातीतं तदव्योङ्कारो एवं सर्वं ह्येतद्ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा चतुष्पा मांडुक्य उपनिषद के प्रारंभ में ओंकारोपासना की विधि उपनिषद बताते हैं। ओंकार का जो एक चित्र परंपरा से प्राप्त है वो ध्यान के लिए है, उसका ध्यान करना चाहिए। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है। वैसे कठोपनिषद में तो ये लिखा है कि ये सगुण ब्रह्म का भी वाचक है। एतद् आलम्बनम श्रेष्ठम, एतद् आलम्बनम परम, एतद् आलम्बनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयसे। तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति जो है वो सगुण पक्ष में ही होती है, निर्गुण पक्ष में नहीं होती। इसलिए ये दोनों का वाचक हो जाता है। ये दो भेद जरूर कर लेने चाहिए, सगुण और साकार। साकार तो सगुण है, लेकिन सगुण का साकार होना जरूरी नहीं है। ये जो भौतिक चक्षु है ये तो आकार को ही देखेंगे, इसीलिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। लेकिन जो ये मानसिक चक्षु है ये तो बिना आकार के भी उसकी कल्पना कर सकता है, इसलिए वो सगुण ब्रह्म होता है। चाहे आप आकार सहित करें और चाहे आप आकार रहित करें, सगुण गुण सहित, निर्गुण गुण रहित माने गुण जिसमें से निकाल लिए गए, साकार आकार सहित, निराकार आकार रहित। तो आकार तो दोनों में मौजूद है, निराकार में भी आकार है और साकार में भी आकार है। एक दफा उसे चस्पा कर दिया तो साकार हो गया, माने कागज साकार हो गया, और अगर उसमें से मिटा दिया उसको तो कागज ही रहा, तो वो निराकार हो गया। तो कागज पे दृष्टि है तब तो वो निराकार है, चाहे उस पर चित्र हो और चाहे चित्र ना हो, और सिर्फ आकृति के ही ऊपर दृष्टि है तो वो फिर साकार है, लेकिन कागज के बिना तो नहीं है ना, इसलिए वो साकार भी सगुण तो होता ही है, और सगुण जो है उसका साकार होना जरूरी नहीं है। बाजार में तो कोरा कागज मिल जाता है, उस पर चांद जैसे चित्र बना दो। ये जो हमको चित्र रूपी कागज मिला हुआ है, ये चित्र कागज के ही समान है, इस पर हजारों चित्र बने हुए। आजकल जो मॉडर्न पेंटिंग जिसको बोलते हैं ना, उसमें उल्टी सीधी टेढ़ी मेढ़ी सब ऐसी लकीर खींच देते हैं। बोले आप इसमें देखिए, आपको एक खरगोश दिखाई पड़ेगा। अरे कुछ भी तो दिखाई नहीं पड़ रहा। अब उसने कह दिया कि खरगोश दिखाई पड़ेगा। हमारे वहां आश्रम में मंदिर में दो पत्थर लगे हुए, तो बहन जी ने कहा कि देखो इसमें महात्मा के दर्शन होंगे। अब बहुत ही इधर से देख रहे उधर से देख रहे, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। फिर उन्होंने बताया देखो ये जो लकीर है ये महात्मा का ये हाथ है, ये जो जब उन्होंने जैसा बता दिया फिर वैसा देखा तो हमें भी महात्मा देख तो उसमें कोई महात्मा था थोड़े। तो ये चश्मा करने की बात है। तो जितनी आकृतियां होती हैं वो सब शब्द मूलक होती हैं, जैसा गुरु ने परंपरा ने बता दिया बस वैसा ही है। लेकिन उससे कागज की कागजता जो है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा कागज भी तो सगुण है ना, तो निर्गुण क्या है? बोले कागज काय से बना? लकड़ी से बना। लकड़ी काय से बनी? तो चलते चले जाना तो आखिर में आकाश में ही तो पहुंचोगे। तो आकाश जो है वो तो निरूप है, उसमें तो कोई न रूप है न गुण है, सिर्फ एक गुण है शब्द का। उस शब्द से आकाश में चांद से चित्र बना दो। तो ये जो वेद है यही हमको सगुण या साकार या निर्गुण भी एक शब्द ही है। तो जितने शब्द हैं उन शब्दों से उस निर्गुण निराकार ब्रह्म में एक भाव बनता है, एक आकृति बनती है, एक ज्ञान बनता है। पहले भी शायद मैंने बताया होगा, अब देखो आप मेरी उंगली की तरफ देखना जरा, कुछ बना? एक सर्किल बन गया, लेकिन है क्या सर्किल? आकाश में सर्किल बनाया जा सकता है? तो एक इम्प्रेशन होता है। सपने में जितनी चीजें दिखलाई पड़ती हैं वो सब ऐसे ही इम्प्रेशन मात्र हैं। इसमें भाष्यकार ने लिखा है कि जैसे कपड़े पर छापे मार दिए जाए, ऐसे चित्र रूपी कपड़े के ऊपर ये सब पूर्व अनुभवों के छापे पड़े हुए हैं, वही हम स्वप्न में देखते हैं। तो क्या वही तो हम जागृत में नहीं देख रहे हैं? जब आप कहते हो कि ये मधुसूदन जी हैं, अरे तो ये पहले आपका परिचय होगा ना मधुसूदन का, वरना तो मधुसूदन नाम आया कैसे आपकी जबान में? और यही मधुसूदन जी हैं, ये जो आइडेंटिफाई किया, मतलब इसमें तो पूर्व ज्ञान आवश्यक है। तो पूर्व ज्ञान जो है वो उत्तर ज्ञान का जनक हो जाता है अभिप्राय है। वस्तु का होना जरूरी नहीं है, सिर्फ ज्ञान का होना जरूरी है। जैसे सच्चे सांप को देखे बिना भी रस्सी में सर्व का भ्रम हो सकता है। रबड़ का सांप देखा हो आपने, माने उससे मिलती जुलती कोई आकृति देखी हो तो उसका भ्रम हो सकता है। तो चाहे वो निर्गुण हो, चाहे सगुण हो, चाहे साकार हो, चाहे कोई भी उपास्य उपासक भाव जितने हैं, कोई भी हो, ये सब ओंकार में जाकर के समा जाते हैं। सारे मंत्र जो हैं वो ओंकार में जाकर के समा जाते हैं। गायत्री कहां से शुरू होती है? ओम से शुरू होती है ना। वैदिक मंत्र जितने हैं सब ओम से शुरू होते हैं। तो जब उनका संकोच होता है तो संकोच होकर के ओम में ही सब विलीन हो जाते हैं। ओम जो है वो शुद्ध परम सत्य परम ब्रह्म का वाचक है। तो इसलिए ऐसी भावना करो, ध्यान तो करो उस परंपरागत आकृति का, और भावना करो कि ये सब ओंकार ही है, ओंकार ही विविध रूपों में ये प्रकट हो रहा है। भूतकाल वस्तु अपने नाम से अलग नहीं होती है, इसको टेक्निकल भाषा में समझना आवश्यक है। जैसे मैंने कहा पदार्थ, तो आपकी बुद्धि में क्या आया? मेटीरियल चीज, हाँ, बाहर मेटीरियल चीज कोई चीज आई हो, लेकिन टेक्निकल भाषा में ये पदार्थ का अर्थ नहीं है। पद माने जो शब्द आपके मुंह में है उसका जो अर्थ अर्थात वस्तु, उसको पदार्थ बोलते हैं। तो जैसे घट शब्द तो हमारे मुंह में है लेकिन उसका अर्थ क्या है? वो गोल घड़ा जो बाहर रखा हुआ है। बच्चे को जो आप शुरू में ज्ञान कराते हैं वो कैसे कराते हैं? का कबूतर, अब यहां कुछ और बोलते होंगे तो गा गणेश, तो का कबूतर, अब वो बच्चा पहले शुरू में तो ऐसे ही बोलता है, ये क्या है कि का कबूतर? अरे तो कबूतर तो इसलिए बताया कि भाई उसके माध्यम से का की पहचान हो जाए। अब आखिर तक तुम का कबूतर ही करते रहोगे तो फिर तुम्हारा ज्ञान क्या हुआ? नारायण, तो का कबूतर नहीं, क। और फिर जब पहचान हो गई तो फिर तो अपने आप ही शब्द मुंह से निकलने लगते हैं, कोई करने की जरूरत ही नहीं होती। नारायण, तो ये भूत में जो वस्तु माने कोई भी वस्तु पदार्थ हो वो अपने शब्द से भिन्न नहीं हो सकती, वरना ज्ञान ही नहीं होगा उसको। गिरा, अर्थ, जल, बीच, सम, कहियत, भिन्न न भिन्न, वंदम सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। वाणी और उसका अर्थ ये भिन्न भिन्न भी है और भिन्न नहीं भी है। जल और लहर ये भिन्न भी है और भिन्न नहीं भी है। हवा न चले, धरती न घूमे, तो समुद्र में कोई लहर नहीं आ सकती, स्टैंड स्टिल रहेगा पानी। तो ऐसे ही भूत में वस्तु और उसका नाम ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भी हैं और अभिन्न भी हैं। तो ओम बोल दिया तो सब नाम उसमें आ जाते हैं। भूतम भवत भविष्यति, वैसे अपने संस्कृत वाले लोगों में तो ये कहावत है, जैसे आजकल बोलते हैं ना बरोबर इधर बोलते हैं बरोबर अंग्रेजी लोग यस सर, तो संस्कृत में बोलते हैं ओम, पंजाबी लोग बोलते हैं हां जी हां जी, स्वीकारोक्ति। ओम माने स्वीकार होते, जो कुछ है सब ओम ही है, इसलिए किसको अस्वीकार करना। तो भूतम भवत भविष्यदिति सर्वमोंकार, ये काल के अंतर्गत जितनी भी चीजें आती हैं कार्य जगत, ये सब ओंकार ही है। अब बोले यच्चान्यत्र कालातीतम तदप्योंकार एव, इन तीनों कालों से जो परे है वो भी ओंकार है। तो क्या है भाई तीनों कालों से परे? तो एक तो स्वयं काल ही तीन कालों से परे है। काल में भूत भविष्य वर्तमान थोड़े ही है, काल तो काल है, बहता पानी है। अब कहीं पे आप हाथ लगा दो बोले इधर का पानी, इधर का पानी, हाथ के नीचे का पानी, यही तो विभाग हुआ। लेकिन पानी तो बह रहा है, काल तो प्रवाही नित्य है, उसमें कोई विभाग नहीं है भूत भविष्य वर्तमान का। तो एक तो काल ही काल त्रिकाल से अतीत है, और जो काल का भी काल है, माने काल की उत्पत्ति जहां से होती है, कहां से होती है काल की उत्पत्ति, जहां से क्रम की उत्पत्ति होती है, क्रम, इसके बाद ये, जहां पहले पीछे का ज्ञान हुआ तो समझो काल की उत्पत्ति हो गई। एक कल्पना की थी किसी नाटककार ने कि कुछ आदमी उसमें कंदरा में घुस गए, कुछ अन्वेषण करना था उन्हें। अब तभी लैंडस्लाइड हो गया और उसका मुंह बंद हो गया गुफा का। अब अंदर घटाटोप अंधेरा, अब कैसे मालूम पड़े कि दिन है कि रात है। अब घड़ी देखें तो घड़ी नहीं दिखे, पर थोड़े आवाज दें तो बाहर आवाज न जाए। पड़े रहे जो कुछ पास में था, खाते पीते रहे, फिर वो घड़ी भी चलनी बंद हो गई। अब उन्हें यही नहीं पता चले कि हम कितने दिन से इसके भीतर घिरे हुए हैं। काल का ज्ञान हमेशा क्रम के ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है। महाराज श्री के शब्द हैं, क्रम की संवित का नाम काल है। तो ये क्रम कहां से उदय होता है, बोले जहां से वृत्ति में आगे पीछे होता है, वृत्ति में से ही काल निकलता है। वृत्ति कहां से उदय होती है, वो आत्मा की लहर है। मृत्यु बर्तने धातु है, आत्मा जब बर्तना चाहता है, आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, लेकिन इच्छा को क्या करे। ब्रह्म में तो कोई संकल्प हो नहीं सकता, लेकिन हो गया तो उसे पूरा हुए बिना रह नहीं सकता। तो जीवात्मा ने अगर संकल्प न किया होता भोग का पहले, तो ये शरीर पैदा ही नहीं होता। और ये शरीर के पैदा होते ही ये सब देश काल वस्तु सब पैदा हो जाते हैं। ये नितांत वैयक्तिक है, देश काल बाहर नहीं है, ये हमारे मन के ही भीतर है। क्योंकि जागृत के जो देश काल हैं वो स्वप्न में नहीं रहते हैं, और स्वप्न के देश काल जागृत में नहीं रहते, और जागृत और स्वप्न के देश काल सुषुप्ति में नहीं रहते। तो वस्तु तो है ही नहीं, सिर्फ प्रतीति के अंतर्गत है। अब रह गई ये पदार्थ वाली बात, तो ये अपने शब्द से अभिन्न है, और शब्द जो है जितने हैं वो सब ओम से अभिन्न है, और ओम परमात्मा से अभिन्न है, परमात्मा का नाम है। इसलिए सब परमात्मा ही है, कहीं हीन दृष्टि करने की जरूरत ही नहीं है। अब अपने अपने दुराग्रह को तो हम कह नहीं सकते। बौद्ध कहते हैं कि दुनिया में कोई उपादान ही नहीं है, सब शून्य ही शून्य है। अब क्या कर लोगे, किसी का अनुभव है ये कि सब शून्य है? सबको फिर यही अनुभव होना चाहिए कि मैं तो शून्य हूं। तो किसी को ये अनुभव नहीं होता है कि मैं शून्य हूं, ना ये अनुभव होता है कि जगत शून्य है। बोले नहीं, वो समाधि में जाकर के ये अनुभव हुआ कि मैं शून्य, तो फिर वो समाधि नहीं है। सुषुप्ति में सब कुछ खो जाता है, लेकिन शून्य हूं या है ऐसा भी तो अनुभव नहीं होता। लेकिन मानते हैं कि दुनिया का कोई उपादान है ही नहीं। भौतिकवादी कहते हैं कि नहीं, अगर उपादान कोई है तो ये सब बाहर ही है, भले ही उसका नाम वो मैटर और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और क्या क्या नाम रख लिए हैं। वैशेषिक दर्शन वाले कहते हैं परमाणु है, उनके परमाणु और ये साइंस वाले परमाणु एक नहीं है, ये ध्यान में रखना है। शब्द तो परमाणु है, जो पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी उसमें जो परमाणु की परिभाषा थी लगभग वही परिभाषा वैशेषिक दर्शन की परमाणु की है, लेकिन आजकल जो परमाणु की साइंस की परिभाषा है वो बिल्कुल अलग है। डाल्टन का परमाणु तो अविभाज्य था, उसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते थे, और आज जो परमाणु है वो तो विभाज्य है, एटम बम बनाई दिया ना है। और कहां पहुंच गए कि एनर्जी में पहुंच गए जो उसके भीतर है। अब वो एनर्जी कभी मैटर बन जाती है कभी एनर्जी, लेकिन है तो दोनों भौतिक ही ना, एनर्जी कहो तो भी भौतिक है, तो ये चेतना कहां से आ गई, ये एनर्जी है कि मैटर है। चेतना माने ज्ञान, ज्ञान कहां से निकल आया। तो बोले निकल सकता है भौतिक से ही निकल सकता है। कैसे निकल सकता है कि हरा पान खाओ होठ लाल हो जाएंगे। तो जैसे हरा पान खाने से लाली निकल जाती है नारायण, ऐसे ही केमिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं उसमें से ज्ञान निकल जाता है। गोबर पानी मिलाकर रख दो एक जगह, थोड़े दिन पीछे उस पर कीड़े पड़ जाएंगे। तो कीड़े कहां से पड़ गए, बोले उसी गोबर पानी में से पैदा हो गए। लेकिन डॉक्टर से ऐसा नहीं मानते, हर चीज के जर्म्स जो है उनके बीच सब जगह मौजूद रहते हैं, सिर्फ गोबर पानी से उनका बढ़ने के लिए अवसर मिल जाता है, बिना बीज के कोई सृष्टि नहीं होती। अच्छा, बाकी जितने मानने वाले हैं संसार के कारण को, वो चाहे सांख्यवादी हो, वो प्रकृति को कारण मानते हैं, तो प्रकृति कभी आंख से या किसी इंद्रिय से देख ही नहीं जा सकती, वो नित्य अनुमित है। तीनों गुणों की साम्यावस्था का नाम प्रकृति है। तो जब साम्यावस्था हो जाएगी तो तुम्हारी बुद्धि कहां बचेगी, फिर देखोगे कैसे। बुद्धि भी साम्यावस्था में पहुंच जाएगी, तो प्रकृति कभी प्रत्यक्ष का विषय नहीं होती। अब बोले कि अमुक अमुक देवता ने बनाई, तो वो देवता भी जो है प्रत्यक्ष नहीं होते, सब भीतर ही मालूम पड़ते हैं, इसलिए इनको अंतरंग उपादानवादी बोलते हैं दर्शन शास्त्र की भाषा। तो बौद्ध जो है ये शून्यवादी, बौद्ध जो है ये निरुपादानवादी है, और साइंस वाले लोग और वैशेषिक लोग ये बहिरंग उपादानवादी है, और बाकी जितने संसार के कारण को मानने वाले हैं वो चाहे प्रकृति को माने, चाहे ईश्वर को माने, चाहे दृष्टि सृष्टिवादी वेदांती हो, क्षणिक विज्ञानवादी बौद्ध हो, ये सब के सब अंतरंग उपादानवादी हैं। लेकिन यहां ये तो विकल्प है ही नहीं कि क्या सच है, यहां तो ये कह रहे हैं जो भी तुम मानते हो मान लो। महाराष्ट्र ने एक बात बहुत बढ़िया समझाई, उन्होंने कहा संसार के बारे में चाहे कार्य का विचार हो चाहे कारण का विचार हो, जब तक वो अनिर्वचनीय कोटि तक तुम्हारा विचार न पहुंच जाए तब तक उस विचार को तुम परम सत्य मत मानना, नहीं, वो तो एक बुद्धि का आग्रह है, जैसे तुम्हारी बुद्धि है ऐसे दूसरे की भी बुद्धि है, वो अपनी बात समझता है तुम अपनी बात समझते हो। तो अनिर्वचनीय क्या है कि हां ऐसे भी हो सकता है, हां ऐसे भी हो सकता है। काहे की झगड़ा करते हो, ये तो बुद्धि का आग्रह है, कोई जरा ज्यादा सच है कोई जरा कम सच है, नहीं तो सब झूठे हैं। अजात ही एकमात्र वेद का सिद्धांत है, न कश्चित जायते जीव संभवोस्य न विद्यते। ये तो मांडुक्य कारिका का वज्र श्लोक है ना। किसी चीज की कभी कोई उत्पत्ति ही नहीं होती, सब ब्रह्म जो का त्यों ही रहता है। उस ब्रह्म का वाचक ओम है, उस ओम का उच्चारण करो, उसके साथ एक हो जाओ, बस इतनी साधना इसमें पर्याप्त। अब कहते हैं कि ये तो ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय हुआ, भाष्य में यही लिखा है प्रतिपत्ति उपाय, ब्रह्म के ज्ञान के लिए उपाय हुआ ये ओंकार का साधन। तो उपाय सच्चा होता है या उपे उससे जो प्राप्त होती है वो चीज सच्ची होती है? तुम्हारा उपाय सच्चा कि झूठा? ब्रह्म तो सच्चा है, लेकिन अगर उपाय सच्चा है तो दो सत्य हो गए, तुम द्वैतवादी हो, और उपाय झूठा है तो झूठे उपाय से सत्य ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो बोले भाई हम ओम में और ब्रह्म में, माने साधन में और साध्य में, हम कोई अंतर नहीं करते। जो बात हमने ओम के लिए कही है अब चलो ब्रह्म के लिए कह देते हैं। दूसरे मंत्र में सर्वम हे तद ब्रह्म, पहले क्या कहा था, ओंकारे वेदम सर्वम ओम, पहले सब ओम था, अब बोले कि ये ब्रह्म ही सब है। अर्थात ब्रह्म और ओम इनमें भेद मत करो। नारायण।